एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनका नाम तो जैसे क्रांति का ही दूसरा नाम बन गया है, थॉमस पेन। एक ऐसा विचारक, एक ऐसा लेखक जिसने अपनी कलम से, अपने शब्दों से जैसे साम्राज्य हिला दिए।
जी हाँ, बिल्कुल। थॉमस पेन 1737-1809 अंग्रेज थे मूल रूप से, पर इनका असर अमेरिका और फ्रांस दोनों की क्रांतियों पर बहुत ही गहरा माना जाता है।
और कमाल की बात यह है कि वो किसी बड़े घराने से नहीं थे, है ना? एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आकर उन्होंने विचारों के दम पर इतिहास का रुख मोड़ दिया।
सही कहा, यही बात उन्हें बहुत खास बनाती है। वो प्रबोधन काल, जिसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसके एक अहम विचारक थे, लेकिन उनकी जड़ें बिल्कुल आम लोगों में थीं।
तो थोड़ा उस जमाने के बारे में बताइए, ये प्रबोधन काल, ये माहौल कैसा था जिसमें पेन जैसे विचारक सामने आ रहे थे?
देखिए, ये बड़ा ही उथल-पुथल का दौर था। 18वीं सदी यूरोप और अमेरिका में नए विचार हवा में थे। तर्क यानी रीजन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वैज्ञानिक सोच, ये सब चीजें पुरानी मान्यताओं को, राजशाही को, चर्च की सत्ता को चुनौती दे रही थी।
मतलब एक बौद्धिक क्रांति चल रही थी।
बिल्कुल, बड़ी घटनाएं हो रही थी। अमेरिकी क्रांति शुरू हो रही थी, फ्रांसीसी क्रांति दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, औद्योगिक क्रांति की आहट सुनाई दे रही थी, और विचारों के स्तर पर प्राकृतिक अधिकारों की बात हो रही थी कि हर इंसान कुछ अधिकार लेकर पैदा होता है।
जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार।
हाँ, और ये कि सरकार का काम इन अधिकारों की रक्षा करना है। फिर लोकप्रिय संप्रभुता का विचार था कि असली ताकत राजा या रानी में नहीं बल्कि जनता में है। जॉन लॉक, रूसो, वोल्टेयर जैसे विचारक इन्हीं सब बातों पर लिख रहे थे। अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन थे,
और पेन के विरोधी भी रहे होंगे।
हाँ, जैसे एडमंड बर्क थे इंग्लैंड में, जो परंपरा और धीरे धीरे बदलाव के हिमायती थे। पेन बिल्कुल उलट थे, वो तेज जड़ से बदलाव चाहते थे। तो ये पूरा माहौल, ये टकराव, ये पेन के क्रांतिकारी विचारों के लिए बिल्कुल सही जमीन थी।
उनकी शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए।
इंग्लैंड के थेटफोर्ड में जन्म हुआ। पिता कॉर्सेट निर्माता थे और क्वेकर थे।
ये क्या मतलब हुआ?
कॉर्सेट निर्माता मतलब कामकाजी वर्ग से थे, कोई अमीर या ऊंचे तबके से नहीं, और क्वेकर होना भी अहम है। क्वेकर एक धार्मिक समूह है जो सादगी, शांति और खासकर हर इंसान की बराबरी पर बहुत जोर देता है। तो भले ही पेन को स्कूली शिक्षा ज्यादा नहीं मिली, पर ये बराबरी वाले विचार शायद उनके जहन में बचपन से ही बैठ गए थे।
अच्छा, और उन्होंने कई तरह के काम भी किए, कॉर्सेट बनाना, टैक्स जमा करना, पढ़ाना भी।
जी हाँ, इससे उन्हें आम आदमी की जिंदगी की, उसकी मुश्किलों की सीधी समझ मिली होगी। कोई हवा हवाई बातें नहीं थी, लेकिन जिंदगी बदली 1774 में,
जब वो बेंजामिन फ्रैंकलिन से मिले।
बिल्कुल, लंदन में फ्रैंकलिन से मुलाकात हुई। फ्रैंकलिन ने उनकी प्रतिभा पहचानी और उन्हें अमेरिका जाने की सलाह दी। शायद इंग्लैंड की नाकामियों से वो खुद भी एक नई शुरुआत चाहते थे।
और अमेरिका पहुंचकर तो उन्होंने जैसे इतिहास ही रच दिया। उनके वो कौन से मुख्य विचार थे जिन्होंने उन्हें इतना प्रभावशाली बनाया?
उनके विचारों के आप कह सकती हैं तीन मुख्य आधार थे। पहला, प्राकृतिक अधिकार। सरकार क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वो व्यक्ति के जन्मसिद्ध अधिकारों की रक्षा करे, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा, लोकप्रिय संप्रभुता, यानी शासन करने का हक किसी राजा या खानदान को नहीं बल्कि जनता को है। सरकार तभी वैध है जब उसे शासितों की यानी जनता की मंजूरी मिली हो।
और तीसरा?
आपने तार्किक धर्म की बात की थी।
हाँ, तार्किक धर्म या डीइज्म, ईश्वर में विश्वास रखो लेकिन किसी चमत्कार, धार्मिक किताब या चर्च के जरिए नहीं बल्कि अपने तर्क और प्रकृति को देखकर। ये संगठित धर्म पर एक तरह का सवाल था। तो इन बुनियादी विचारों ने उनके राजनीतिक सिद्धांतों को कैसे रूप दिया? वो कैसी सरकार चाहते थे?
बहुत साफ तौर पर वो राजशाही और कुलीन वर्ग के सख्त खिलाफ थे। वो लोकतांत्रिक गणतंत्रवाद चाहते थे जहां प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाएं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनके लिए सबसे ऊपर थी।
और आपने आर्थिक समानता की भी बात की थी।
जी, ये बात उन्हें बाकी कई विचारकों से अलग करती है। वो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं कर रहे थे, वो मानते थे कि आर्थिक समानता और सामाजिक कल्याण भी जरूरी है। उनकी एक किताब है एग्रेरियन जस्टिस, उसमें तो वो एक तरह की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का पूरा खाका पेश करते हैं।
ये तो वाकई अपने समय से बहुत आगे की सोच है। पर सिर्फ अच्छे विचार होना ही काफी नहीं होता, उन्हें लोगों तक पहुंचाना भी पड़ता है। पेन इसमें कैसे कामयाब हुए?
यही पेन का जादू था। वो बड़े बड़े दार्शनिकों की तरह मुश्किल भाषा में नहीं लिखते थे, वो लिखते थे आम आदमी के लिए, किसान, कारीगर, सिपाही। उनकी भाषा सीधी, सरल, जोशीली, यादगार जुमलों और नारों जैसी। उन्होंने मुश्किल फलसफों को ऐसी जुबान दी जिसे हर कोई समझ सके, जिससे हर कोई जुड़ सके।
जैसे कि उनकी सबसे मशहूर रचना कॉमन सेंस।
बिल्कुल, 1776 में आई कॉमन सेंस, महज 40-50 पन्नों का एक पैम्फलेट, लेकिन इसने अमेरिका में जैसे तूफान ला दिया।
क्या था इसमें ऐसा?
इसमें पेन ने बहुत सीधी और जोरदार दलीलें दी कि राजशाही यानी राजा का शासन एक बेवकूफी है, प्रकृति के खिलाफ है, कि ब्रिटेन से नाता तोड़ना ही अमरीका के हित में है, और ये कि अमरीका को फौरन अपनी आजादी का ऐलान कर देना चाहिए।
और इसका असर
जबरदस्त। कहते हैं कुछ ही महीनों में 1,25,000 से ज्यादा प्रतियां बिक गईं। सोचिए उस जमाने की आबादी के हिसाब से ये लगभग हर अमरीकी तक पहुंच गया। इसने आम लोगों के मन में आजादी की भावना को भड़का दिया। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये खुद एक घटना थी।
कमाल है, इसके बाद आई द अमेरिकन क्राइसिस।
हाँ, ये अमेरिकी क्रांति के दौरान 1776-1783 लिखे गए पैम्फलेट्स की एक सीरीज थी। वो युद्ध का बहुत मुश्किल दौर था, अमेरिकी सेना हार रही थी, लोगों के हौसले टूट रहे थे। पेन ने ये पैम्फलेट्स लिखे ताकि लोगों का, सैनिकों का जज्बा बना रहे।
और वो मशहूर लाइन, दीज आर द टाइम्स दैट ट्राई मेन सोल्स, ये ऐसे समय हैं जो इंसानों की आत्माओं को परखते हैं, ये इसी से है।
जी हाँ, पहले ही पैम्फलेट की शुरुआत इसी लाइन से होती है। कहा जाता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन इसे अपनी थकी हारी सेना को पढ़कर सुनाते थे। आप सोच सकती हैं कि शब्दों में कितनी ताकत भर दी थी पेन ने।
फिर फ्रांस की क्रांति हुई और उन्होंने लिखी राइट्स ऑफ मैन।
सही, एडमंड बर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति की बहुत आलोचना की थी। उसके जवाब में पेन ने राइट्स ऑफ मैन 1791-1792 लिखी। इसमें उन्होंने न सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति का बचाव किया, बल्कि इंसानी अधिकारों, चुनी हुई सरकार और सामाजिक कल्याण की जोरदार वकालत की।
सामाजिक कल्याण मतलब?
जैसे बुजुर्गों के लिए पेंशन, गरीबों की मदद, इस तरह की चीजें। उन्होंने सरकार की जिम्मेदारी समझी इसे।
लेकिन फिर आई द एज ऑफ रीजन।
जी,
और उससे काफी विवाद हुआ है ना?
हाँ, द एज ऑफ रीजन 1794 से लिखना शुरू किया, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। इसमें उन्होंने संगठित धर्मों, खासकर ईसाई धर्म और बाइबल पर बहुत तीखे सवाल उठाए। उन्होंने फिर से अपने तार्किक धर्म यानी डियरिज्म की बात की।
क्या वो नास्तिक हो गए थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ईश्वर में मानते थे, पर उनका कहना था कि ईश्वर को जानने के लिए किसी चर्च या किताब की जरूरत नहीं, बल्कि तर्क और प्रकृति का ध्यान ही काफी है। लेकिन उस जमाने में ये बातें बहुत ज्यादा थी। उन्हें धर्म विरोधी, नास्तिक तक कह दिया गया। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह उनकी इज्जत को भारी धक्का लगा।
अच्छा,
और वो एग्रेरियन जस्टिस जिसका आपने जिक्र किया था, वो कब आई? ये बात और विस्तार से रखी कि जमीन पर टैक्स लगाकर एक फंड बनाया जाए, उससे हर नौजवान को 21 साल का होने पर एक मुश्त रकम मिले ताकि वो अपना जीवन शुरू कर सके, और 50 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन मिले।
ये तो आज की यूनिवर्सल बेसिक इनकम, UBI या सोशल सिक्योरिटी जैसा कुछ लग रहा है।
हाँ, एक तरह से उन विचारों का बीज था, ये बहुत दूरदर्शी सोच थी।
अगर हम पेन की तुलना उनके समय के दूसरे बड़े नामों से करें तो वो कहाँ ठहरते हैं?
दिलचस्प सवाल है। अमेरिका में देखें तो जॉन एडम्स या अलेक्जेंडर हैमिल्टन जैसे नेताओं से वो कहीं ज्यादा रेडिकल थे, ज्यादा बदलाव चाहते थे। थॉमस जेफरसन के विचारों से शायद कुछ मेल खाते थे, पर पेन ज्यादा, मतलब लोक लुभावन थे, सीधे आम जनता से बात करने वाले।
और यूरोप में?
यूरोप में वोल्टेयर जैसे विचारक थे, पर पेन उनसे ज्यादा लोकतंत्रवादी थे, और एडमंड बर्क तो उनके एकदम विरोधी थे ही। बर्क परंपरावादी, पेन क्रांतिकारी।
और लॉक जैसे दार्शनिकों से क्या फर्क था?
सबसे बड़ा फर्क शायद लिखने की शैली और पाठक वर्ग का था। लॉक या रूसो जैसे लोग विद्वानों के लिए, पढ़े लिखे वर्ग के लिए लिख रहे थे। पेन की लिखाई का निशाना था आम आदमी। उनकी असली ताकत इसी में थी कि वो मुश्किल विचारों को ऐसी भाषा देते थे जो सीधी, सरल, जोशीली और असरदार हो।
तो उनकी विरासत क्या है? आज उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं?
देखिए, उनका असर तो फौरन हुआ। कॉमन सेंस ने अमेरिकी क्रांति को हवा दी, राइट्स ऑफ मैन ने यूरोप में लोकतांत्रिक आंदोलनों को, लेकिन जैसा हमने कहा, द एज ऑफ रीजन की वजह से जीते जी उनकी प्रतिष्ठा बहुत गिर गई।
पर क्या बाद में उन्हें फिर से पहचाना गया?
हाँ बिल्कुल, 19वीं सदी में मजदूर आंदोलनों ने, गुलामी खत्म करने वालों ने, स्वतंत्र विचारकों ने उनके विचारों को फिर से अपनाया, और 20वीं सदी में आकर विद्वानों ने उन्हें लोकतांत्रिक चिंतन के इतिहास में उनका सही मुकाम दिया।
और आज के समय में क्या आज भी पेन की कोई रेलेवेंस है?
मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा है। उनके प्राकृतिक अधिकारों के तर्क आज भी दुनिया भर में नागरिक अधिकारों के आंदोलनों में इस्तेमाल होते हैं। उनके लोकतांत्रिक आदर्श आज भी प्रेरणा देते हैं। धर्म और तर्क पर उनके विचार सेक्युलर सोच वालों के लिए अहम हैं। और हाँ, उनकी वो सत्ता विरोधी, अभिजात्य विरोधी आवाज, वो तो आज की राजनीति में भी कहीं न कहीं सुनाई देती है।
और अग्रेरियन जस्टिस वाले विचार,
वो तो सीधे सीधे प्रासंगिक हैं। आज जो सामाजिक सुरक्षा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई जैसी बहसें चल रही हैं, पेन ने तो 200 साल पहले इनकी नींव रख दी थी।
चलिए उनके कुछ मशहूर कथन याद करते हैं। पहला, ये ऐसे समय है जो इंसानों की आत्माओं को परखते हैं।
जी, ये द अमेरिकन क्राइसिस से है। जैसा बताया, अमेरिकी फौज की हालत बहुत खराब थी, हार का माहौल था। पेन कह रहे थे कि यही असली परीक्षा की घड़ी है, मुश्किल वक्त में ही असली चरित्र पता चलता है। ये हिम्मत बढ़ाने वाले शब्द थे।
बिल्कुल। दूसरा,
सरकार अपनी सबसे अच्छी स्थिति में भी एक आवश्यक बुराई है।
गवर्नमेंट इवन इन इट्स बेस्ट स्टेट इज बट अ नेसेसरी इविल।
ये कॉमन सेंस से है। ये दिखाता है कि पेन सरकार को जरूरी तो मानते थे, पर शक की निगाह से देखते थे। उनका मानना था कि सरकार कम से कम होनी चाहिए, सिर्फ अधिकारों की रक्षा के लिए। ज्यादा दखलंदाजी खतरनाक है।
तीसरा, दुनिया मेरा देश है, सारी मानव जाति मेरे भाई हैं, और अच्छा करना मेरा धर्म है।
द वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड आर माई ब्रदरन, एंड टू डू गुड इज माई रिलीजन।
क्या खूबसूरत बात है। ये राइट्स ऑफ मैन की भावना है, राष्ट्रवाद से, धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर पूरी इंसानियत को अपना मानने की बात। ये उनकी विश्व दृष्टि दिखाता है।
और चौथा, मेरा अपना मन ही मेरा अपना चर्च है।
माई ओन माइंड इज माई ओन चर्च।
ये द एज ऑफ रीजन का सार है, यानी सच और नैतिकता के लिए किसी बाहरी सत्ता, किसी पादरी या किताब पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। आपका अपना विवेक, आपकी अपनी तर्क बुद्धि आपकी मार्गदर्शक है।
जाहिर है, ऐसे विचारों पर उस समय तो बहुत बवाल मचा होगा, आलोचना भी हुई होगी।
बहुत ज्यादा। बर्क जैसे रूढ़िवादियों ने तो उन्हें खतरनाक ही माना, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। और द एज ऑफ रीजन के बाद तो धार्मिक नेताओं ने उन्हें धर्म निंदक, नास्तिक घोषित कर दिया। उन्हें समाज से लगभग बाहर ही कर दिया गया।
और क्या, आज भी उनके विचारों पर कोई बहस होती है?
हाँ, आज भी होती है। जैसे, क्या उनका वो सीधा लोकलुभावन अंदाज हमेशा लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है, या वो भीड़ को भड़का सकता है? फ्रांसीसी क्रांति में जो हिंसा हुई, उसमें उनकी भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। उनके आर्थिक विचार कितने प्रैक्टिकल थे, और ये कि क्या उनकी कट्टरता जरूरी थी या उसने उनके प्रभाव को सीमित कर दिया। ये सब बहसें आज भी चलती हैं।
उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं। शायद सुना है वो फ्रांस में रहे पर फ्रेंच नहीं सीख पाए।
हाँ, ये मजेदार बात है। सालों फ्रांस में रहे, नेशनल कन्वेंशन के सदस्य भी बने, पर फ्रेंच कभी धारा प्रवाह नहीं बोल पाए। और एक और किस्सा फ्रांस का ही है, आतंक के दौर का।
वो गिलेटिन से बचने वाला।
जी, उन्हें मौत की सजा होनी थी। रात में जिन कैदियों को अगले दिन मारना होता था, उनकी कोठी के दरवाजे पर बाहर से चाक का निशान लगा देते थे। पेन की कोठी का दरवाजा उस रात अंदर की तरफ खुला हुआ था, तो निशान दरवाजे के अंदरूनी हिस्से पे लग गया। जब दरवाजा बंद हुआ तो निशान छिप गया। सुबह जब जल्लाद आए तो उनकी कोठरी पर निशान नहीं मिला और वो बच गए। किस्मत।
वाकई किस्मत। और ये भी कहा जाता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने उनकी रिहाई के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया था जब वो फ्रांस में कैद थे।
हाँ, ये एक दुखद पहलू है। पेन ने क्रांति के लिए इतना कुछ किया था, पर जब वो मुश्किल में थे तो वॉशिंगटन, जो तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी मदद में देरी की। पेन इससे बहुत नाराज हुए और बाद में वॉशिंगटन को एक बहुत कड़वा खुला खत लिखा था।
और उनका अंत भी काफी अकेला और गरीबी में हुआ।
हाँ, न्यूयॉर्क में उनकी मृत्यु हुई और अंतिम संस्कार में सिर्फ 6 लोग थे। ये दिखाता है कि अपने विचारों की वजह से वो कितने अलग थलग पड़ गए थे। और एक और अजीब बात, उनकी हड्डियां भी बाद में खो गई। एक प्रशंसक उन्हें इंग्लैंड ले गया था, पर वो कहाँ है किसी को नहीं पता।
लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंकलिन जैसे लोग उन्हें अपने जमाने का सबसे महान राजनीतिक लेखक मानते थे, और वो सिर्फ लेखक नहीं थे, आविष्कारक भी थे।
बिल्कुल, उन्होंने लोहे के सिंगल स्पैन पुल का डिजाइन बनाया, जो उस समय के लिहाज से बहुत आगे की चीज थी। धुआं रहित मोमबत्ती भी डिजाइन की। वो सिर्फ विचारक नहीं थे, प्रैक्टिक भी थे।
तो अगर हमें थॉमस पेन को एक वाक्य में समेटना हो तो क्या कहेंगे?
कह सकते हैं कि थॉमस पेन वो चिंगारी थे जिसने क्रांति की आग जलाई। उन्होंने ऊंचे फलसफों को आम आदमी की जुबान दी और शब्दों को हथियार बना दिया। उनकी प्रतिभा विचारों को गढ़ने से ज्यादा उन्हें फैलाने में थी।
उन्होंने राजनीतिक बातचीत का तरीका ही बदल दिया।
हाँ, बिल्कुल, सीधा, असरदार, आम आदमी को संबोधित। उनकी विरासत दोहरी है, एक तरफ वो क्रांति के नायक हैं, दूसरी तरफ अपने ही समय में बहिष्कृत, लेकिन उनके मूल विचार मानव अधिकार, लोकतंत्र, तर्क, सामाजिक न्याय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।
तो आज की इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। थॉमस पेन का जीवन और उनके विचार हमें क्या सिखाते हैं विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने की ताकत के बारे में और उस कश्मकश के बारे में जो हमेशा क्रांतिकारी विचारों और समाज की स्वीकृति के बीच चलती रहती है। क्या आज के दौर में जब लोकतंत्र और तर्क पर नए सवाल उठ रहे हैं पेन के विचार हमें कोई नई रोशनी दे सकते हैं?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्ट्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।